मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अखिलेश कुमार यादव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार पाल मुंबई महाराष्ट्र से, देवी प्रसाद दुबे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और संजय कुमार यादव आपका गांव है फत्तूपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो अखिलेश, राजीव, देवी प्रसाद और संजय, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं समझने की तकनीक के बारे में आपसे बातें करूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि समझने की तकनीक के बारे में अभी जो पिछला सप्ताह गया है उससे जो पिछला सप्ताह था उसमें हमने इस विषय की शुरुआत की थी। मैंने आपको एक कोटेशन दिया था कार्ल मार्क्स का और मैंने कहा था कि आप सब इसे समझें। बीच में घटनाएं कुछ इस तरीके की घटित होती चली गई कि जो पिछला सोमवार था उसमें मैं इस विषय पर आपसे बात नहीं कर सका, लेकिन आज मैं उसी कोटेशन को आधार बनाकर इस विषय पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए एक दो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी खबरें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। मित्रों, एक छोटी सी खबर है, खासकर ज्योग्राफी से संबंधित या के लिए प्री एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी के मेंस में भी पूछा जा सकता है, और वह है ज्वालामुखी और सुनामी को लेकर के। जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का, तो उसमें स्पेशली सुनामी और ज्वालामुखी भूकंप की चर्चा की गई है। और जब आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि लगभग हर साल सुनामी हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो या इसी तरह की कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो उसको लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्योंकि अभी जो सुनामी में जो अभी इंडोनेशिया में जो सुनामी की घटना हुई है ये थोड़ी सी चर्चा में आ रही है, हो सकता है कि आगे इस पर और बातें लिखी जाएं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। तो आप जो सुनामी, ज्वालामुखी और भूकंप, ये जो तीन टॉपिक हैं, इन पर अच्छे से तैयारी कर लें, ये मेरा सजेशन है। और इसलिए भी मुझे सुनामी स्पेशली खासकर महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है क्योंकि इस साल दुनिया में केवल 2 बार सुनामी आई है, 2 बार, और दोनों बार इंडोनेशिया में आई है, और ज्वालामुखी के बाद ही लगभग सुनामी आती है। तो खासकर जो प्रश्न बन रहा है वो ये कि इंडोनेशिया में ही सुनामी क्यों आई या ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ज्यादा क्यों आते हैं। प्रश्नों का जो झुकाव होगा, जिस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे चाहे प्री में या मेंस में, तो मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह का होगा। तो थोड़ा सा आप इस पर विशेष ध्यान दे लें। जो दूसरी खबर है फ्रेंड्स, वो इससे पहले की है लेकिन वो ऑफिशियल मीडिया की खबर नहीं है, वो प्राइवेट चैनल्स में इसकी चर्चा हुई है, अखबारों में इसकी चर्चा काफी हो रही है, और वह है निजता के अधिकार को लेकर। और आपको मालूम है कि जो निजता का अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और ये केवल भारत का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। अभी केंद्र सरकार ने एक जो आदेश जारी किया है उसके तहत जो गृह मंत्रालय है उसने आदेश जारी किया कि जो रक्षा, डिफेंस से जुड़े हुए, याद रखिए रक्षा, और दूसरा खुफिया तंत्र से जुड़े हुए यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हुए जो 10 संगठन हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी कंप्यूटर, किसी के भी कंप्यूटर में जो डेटा हैं उनको बकायदे देख सकते हैं, उनको जब्त कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपके कंप्यूटर पर निगरानी रख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 10 एजेंसीज को अधिकृत किया है, जिसमें 2 श्रेणी की एजेंसियां हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा क्योंकि प्री में आपको इसी तरह से उलझाने की कोशिश की जाती है। पहला जो डिफेंस की एजेंसियां हैं और दूसरे हैं उसकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित एजेंसीज हैं, जैसे रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये फॉरेन कंट्रीज में एक तरीके से काम करती है, और हमारे यहां अपने यहां जो है वो आप जानते ही हैं। तो ये एजेंसियां किसी के भी कंप्यूटर में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसको लेकर के बहुत ज्यादा देश में एक बहस की स्थिति बनी हुई है या विवाद की स्थिति छिड़ी हुई है, और हो सकता है कि इस आदेश के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाए भी, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी है एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। नो डाउट कि ये जो व्यवस्था की गई है, देखिए अब यहां दो अधिकार हो गए, एक तो जन सुरक्षा है और दूसरा मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा है, मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। तो ये जो निगरानी की जाएगी वो इस बात के लिए ही की जाएगी कि हमारे देश की सुरक्षा को तो कोई खतरा नहीं है, तथ्य ये है। लेकिन हमेशा आप जानते हैं कि इन चीजों का गलत इस्तेमाल भी होता है। जैसे एक तथ्य, एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि जो हमारे यहां टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसीज हैं उनको भी यह अधिकार दिया गया है कि वो आंकड़ों हमारे कंप्यूटर पर हस्तक्षेप कर सके। तो अब टैक्स कलेक्शन करने का सच पूछे तो उस तरह से सुरक्षा तंत्र से, जन सुरक्षा से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे निजी अधिकारों पर यह बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। और एक बात और भी कही जा रही है कि इनमें से कुछ एजेंसीज तो ऐसी हैं, सच ये है कि उनके गठन का कोई उस तरीके से कानूनी आधार ही नहीं है, बस ब्रिटिश जमाने से वो बना दी गई थी और वही चलती आ रही हैं। जबकि दुनिया की जो दो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हमारी जितनी भी एजेंसियां होंगी वो बकायदे संसदीय निगरानी में होंगी, यानी कि पार्लियामेंट की देखरेख में होंगी, और पार्लियामेंट ही डेमोक्रेसी में सर्वोच्च है क्योंकि हम ही पार्लियामेंट की रचना करते हैं, तभी हमारा नियंत्रण होता है, वो इससे भी परे हैं। तो इस तरह से बहुत से इस पर सवाल मित्रों उठ रहे हैं, और आज इस टॉपिक को लेकर के दो एडिटोरियल कमेंट, दो तीन एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस सूचना के साथ, या यूं कह लीजिए कि इस सलाह के साथ कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हुए इस पर आप छोटे छोटे नोट्स लेना शुरू कर दें, और बकायदे पॉइंट वाइज और बहुत ही जो तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण पॉइंट्स हैं केवल उन्हें ही आप नोट करें। तो मित्रों आइए अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, समझने की तकनीक पर। मैंने आपको एक कोटेशन दिया था जो कार्ल मार्क्स का था और उसे मैं यहां दोहराना चाहूंगा। कोटेशन यह था कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्पष्ट नहीं हुई जब तक कि उसकी जरूरत पूरी करने वाली सभी उत्पादक शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हो गई हों, और वह तब तक पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान नहीं लेती जब तक कि पुराने समाज के ढांचे में उनके अस्तित्व की भौतिक परिस्थितियां तैयार नहीं हुई हो। अब आप देखिए कि जब आप सामान्य रूप से इसे पढ़ते हैं तो कोई बहुत कठिन जैसा नहीं लगता, भाषा आसान है, इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हम उनके भी एक एक शब्द के अर्थ जानते हैं, लेकिन इसके तहत समाज शास्त्र का या सामाजिक परिवर्तन का या कह लीजिए कि संपूर्ण परिवर्तन का एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ा सूत्र छिपा हुआ है। इसीलिए मैंने इस कोटेशन को चुना और ये आपसे रिक्वेस्ट की कि ये पढ़ने की बात नहीं है, ये रटने की भी बात नहीं है, बल्कि बात है समझने की कि आप इसे समझिए। तो अब देखिए कि इसे आप समझेंगे कैसे। कुछ बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब मैं उसके आगे की बात बता रहा हूं आप इसे समझेंगे कैसे। सबसे पहली बात कि आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप समय की जल्दी में हैं तो समझने की कोशिश बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जल्दबाजी से इसे, इस कोटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके लिए तो इत्मीनान चाहिए, समय चाहिए और थोड़ी सी मेहनत चाहिए, और मेहनत के साथ ही साथ दिमागी जद्दोजहद भी चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को चाहते हैं कि बेचारे को आराम मिलता रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई परेशानी ना हो, एक लाडले पुत्र की तरह आप उसकी परवरिश करना चाहते हैं तो समझने की कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए। यहां तो आपको थोड़ा सा एक निर्मम पिता बनना पड़ेगा। और आप निर्मम पिता कैसे बनेंगे उसके मैं आपको कुछ तरीके यहां बता रहा हूं। आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद इसे मॉडल में कन्वर्ट कीजिए। मॉडल में कन्वर्ट कीजिए कहने का मेरा मतलब है कि आप इसे इमेज में कन्वर्ट कीजिए, परिवर्तित कीजिए, यानी कि दृश्य चित्र लाइए दिमाग में। और चूंकि आप समझने की शुरुआत कर रहे हैं, इसे अपना अभ्यास बनाना चाह रहे हैं, तो बकायदे आपके पास कागज कलम होने चाहिए ताकि आप लिख सके। आप मत समझिए कि आपके दिमाग की क्षमता इतनी अद्भुत है कि आप जो जो चीज उसमें लिख रहे हैं डाल रहे हैं जब जरूरत होगी आप उसे हासिल कर लेंगे, नॉट एट ऑल। आपको बकायदे कागज कलम का सहारा लेना चाहिए और फिर मॉडल क्रिएट करना चाहिए। देखिए आप कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे, कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्पष्ट नहीं हुई। आप एक सामाजिक व्यवस्था का मॉडल लाइए, कोई भी एक नाम लाइए कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था। तो कौन सी सामाजिक व्यवस्था? आप अभी की सामाजिक व्यवस्था को ले आइए, आप जो औद्योगिक क्रांति की सामाजिक व्यवस्था थी उसका नाम लिख लीजिए, आप कृषि युग की जो सामाजिक व्यवस्था थी आप उसका नाम लिख लीजिए, अभी की जो एक तरह से कह लीजिए सूचना क्रांति या सूचना तकनीक की जो सामाजिक व्यवस्था है आप उसका नाम लिख लीजिए। जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात कहते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा समाज अभी है किस तरीके का, वह सामाजिक व्यवस्था है। कुछ समय पहले तक हमारे समाज में, चलिए एक उदाहरण के जरिए मैं स्पष्ट कर दूं, कि ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी और उद्योगों का विस्तार हुआ। ज्वाइंट फैमिली बेसिकली एग्रीकल्चर टाइम की फैमिली, क्योंकि हम मिलकर सामूहिक रूप से ही खेती के काम कर सकते थे। फिर औद्योगिक क्रांति आ गई, मशीन आ गई, तो अब ज्वाइंट को खत्म होना ही था, तो ज्वाइंट फैमिली टूट गई, हस्बैंड वाइफ और बच्चे एक साथ रहने लगे, ठीक है, न्यूक्लियस फैमिली आ गई। अब सूचना क्रांति ने क्या कर दिया, आपको नहीं लगता है कि इस न्यूक्लियस फैमिली को भी तोड़ रही है? इसलिए तोड़ रही है कि पत्नी को अपना कंप्यूटर चाहिए, पत्नी को अपना टीवी चाहिए, पति को अपना टीवी और अपना कंप्यूटर चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको अपना अपना टीवी और कंप्यूटर चाहिए, अपने अपने स्मार्टफोन चाहिए। तो मतलब पहले, कुछ समय पहले आप सोच करके देखिए, सन 80-90 के आसपास घर में एक टीवी हुआ करता था जो ड्राइंग रूम में रखा रहता था और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके एक प्रोग्राम देखा करते थे कोई भी, क्योंकि एक ही बार में एक प्रोग्राम ही देख सकते हैं। अब क्योंकि सूचना के क्षेत्र में क्रांति हो गई तो सबको अपना अपना टीवी चाहिए, सबके बेडरूम में टीवी है, ड्राइंग रूम से टीवी गायब हो गया है और बेडरूम में पहुंच गए और सबके बेडरूम में टीवी है, स्टूडेंट्स के बेडरूम में टीवी है कि वो अपने ढंग से चीज देख सके, सबके अपने अपने हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है, टूटा एक सामाजिक व्यवस्था। अब ये कह रहे कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक दिखाई नहीं देती, स्पष्ट नहीं हुआ मतलब दिखाई नहीं देती है, वो बनती तो रहती है, जैसे मकान बन रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है ना, स्पष्ट रूप से उसका चेहरा नहीं उभर रहा है। जब बन के तैयार हो जाता है तो उसका चेहरा उभरता है। या चित्रों को ही देखिए, जब कोई चित्र बनाता है तो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, आपको लगेगा कि यार ये क्या गोदागादी कर रहा है, लेकिन जब चित्र बन के तैयार हो जाता है तो खूबसूरत हो दिखाई देने लगता है कि हाँ ये घोड़े का चित्र है या हाथी का चित्र है या गधे का चित्र है, आप पहचान लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्पष्ट नहीं हुई जब तक कि उसकी जरूरत पूरी करने वाली सभी उत्पादक शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हो गई हो। तो एक सामाजिक व्यवस्था जिसे जन्म लेना है, बहुत जरूरी है कि उसके लिए जो जो चीजें जरूरी होंगी वो सारी सारी परिस्थितियां विकसित हो जाएं। जब तक परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं बनेंगी तब तक वो अस्तित्व में कैसे आएगी, फसल कैसे उगती है, आप देखिए कि फूल कैसे खिलते हैं, मौसम के हिसाब से खिलते हैं ना, जिस तरह का मौसम होगा उस तरह के उसके फूल खिलेंगे। तो यहां वो यही बात कह रहे हैं कि जब तक बाहरी परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो जाएं, तो अभी हम इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली परिस्थितियों को देख रहे हैं, इसको बनने में कितना साल लग गया। आप देखिए कि जब पढ़ा लिखा तबका आया, उनके लाइफ में फास्टनेस आ गई, उस तरह की फिलॉसफी तैयार की गई कि भैया जिंदगी में आपको क्या चीजें चाहिए, तो जिंदगी में आपको यही चीजें चाहिए, मनोरंजन को ज्यादा महत्व दिया गया, इन्फॉर्मेशन को ज्यादा महत्व दिया गया। जब इस तरह की परिस्थितियां बन गई जो इसके लिए जरूरी थी, तो एक सामाजिक व्यवस्था ने रूप में अपने आप को ढाल लिया जो हमें आज दिखाई दे रहा है, और वह तब तक पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान नहीं लेती, जब तक कि पुराने समाज के ढांचे में उनके अस्तित्व की भौतिक परिस्थितियां तैयार नहीं हुई हों। इनफैक्ट वो पहली ही बात को दूसरे वाक्य में रीइन्फोर्स कर रहे हैं कि एक पुरानी चीज बनी हुई है, पुरानी चीज बनी हुई है, उस पुरानी चीज के खत्म होने की जरूरत है और उसका स्वरूप इस तरीके से बने खत्म होने के बाद कि उसमें जो नई चीज आ रही है फिट हो सके। रेडियो खत्म हुआ, उसकी जगह पर टेलीविजन आ गया, वहां फिट हो गया। तो जब रेडियो पूरी तरह से खत्म हो गया तो टेलीविजन पूरी तरह से स्थापित हो गया। जब हम भौतिक परिस्थितियां की बात करते हैं तो देखिए, भौतिक परिस्थितियों का मतलब है कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, वो आंतरिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, जब आप किसी भी ऐसे टॉपिक को पढ़ें और तो आपको चाहिए कि आप बकायदे उसके पॉइंट्स नोट करते जाएं, एक एक शब्द के अर्थ को समझते चले जाएं और उसके आधार पर अपने दिमाग में बिंब लाएं, मॉडल तैयार करें, और जब मॉडल तैयार करेंगे तभी उसकी आप व्याख्या कर सकेंगे, उसको सही तरीके से समझ सकेंगे, और जब समझेंगे तभी आप उसका चौतरफा इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अदरवाइज फिर एक वह शुष्क इंफॉर्मेशन का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, ये तो समझने की तकनीकी के बारे में कुछ बातें। आज के करंट कंटेंट में फ्रेंड्स, एक आर्टिकल डाला गया है, वो है पलायन करने वाली जनता के लिए अपेक्षित नीति की आवश्यकता। यहां जो पलायन है वो गांव से शहर की ओर पलायन की बात है, और ये सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सब को मैं सलाह दूंगा कि इसे आप सब डेफिनेटली पढ़ें, समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं: के बी मीना, तेजिंदर सिंह, रजनी कुमारी हरियाणा से, दीपक विश्वास, कृष्ण कुमार गोपालगंज बिहार से, और आस्था मिश्रा। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्ण कुमार, आपको एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, सभी मेरे प्रिय श्रोताओं की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपने ओर से आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने CBT 2 एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त की है। कृष्ण कुमार हमारे 9th बैच के स्टूडेंट रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और भविष्य की और भी बेहतर सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।